तो अगर आपके अंदर ये आग लगी है, ये तड़प लगी है, फम ममायन फोन्ना सुफयम को सूरत राद में आता है कि मैंने लोगों के लिए नफामंद बनना है, फिर ही लोग फायदा देंगे। अल्लाह के नबी की हदीस अगर आपको याद है कि खैर उन्नास मैन फोन्नास, तरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा दे, तो माशाल्लाह आपने इस कोर्स का हदफ पूरा किया। मैं सोचती हूँ कि बंदा मोमिन को इस कुरान को पढ़कर चौथे पारे की अगर आए कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ये समझ आ गई है और पूरा कुरान आपको भी क्लियर नहीं हुआ, तो आपने वो ले लिया जो मगज़ था। आप देखिए कि बादाम होते हैं या अखरोट होते हैं ना, इतने छिलके होते हैं उसमें, अंदर से निकलता क्या गुदा, इतना सा, उसके इर्द गिर्द भी छिलके होते हैं, उसको भी निकाल के गिरी थोड़ी सी खाते हैं। कभी आप एक किलो अखरोट तोड़ के तो देखे, जिस टोकरी में अखरोट डाले ना वो इतनी सी बॉल होगी, और पीछे वो छिलके जो पहले इतने से सिमटे थे वो इतने हो जाते हैं। कुरान का मगज और गुदा, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों के लिए तैयार किए गए। सब खुद से पूछें कि मैंने इस आयत का हदफ पा लिया। मैं आप सबको आज कुछ बातें पूछती हूँ कि आपने इस कुरान को पढ़ के अब करना क्या है। देखिए ना, आपके पास कोई हदफ था, पढ़ लिया खत्म, लेकिन आपने जो करना है ना वो एक काम करना है कि अपनी जिंदगी का मिशन बना लें कि हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कहते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है कि इस दुनिया में अल्लाह का नाम रहे, और यही मकसद नबी की बेसत का था कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़िंदगी का यही मकसद था कि दीन इस्लाम को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब कर दे, चाहे वलव करिहल काफिरून वलव करिहल मुशरिकून कुछ भी हो। तो हमारी अब ज़िंदगी का मकसद एक ही है, अगर नहीं जाता है कि इस दुनिया में अल्लाह का नाम रहे। कहते हैं कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे लेकिन जाम रहे। साकी कौन होता है जो दूसरों को पानी पिलाता है, जाम क्या जिसमें पानी पीते हैं। नबी सल्लम अपना काम करके गए, अगर वो साकी थे वो आज नहीं है, लेकिन जाम मौजूद है कुरान और हदीस। आज मैं और आप ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं, कल हमारा नाम माजी की एक तस्वीर बन जाएगा, हम नहीं रहेंगे, हर दौर में लोग जाते रहेंगे, लेकिन काम एक है। कह लीजिए कि नबूवत गई, कार्य नबूवत बाकी है, अब नबी कोई नहीं बनेगा, लेकिन नबियों वाला काम होना है, और इस काम को करने के लिए जो ग्रुप है वह बाप है, हामिल कुरान, कुन तुम खैर उम्मतिन। क्योंकि आपने ये आयतें पढ़ ली, आपको समझ आ गई, ये उनको नहीं समझ आती जो सिर्फ कुरान खानी में सपारा सपारा पढ़ते हैं बेचारे, ये उनको भी नहीं समझ आती जो रबीउल अव्वल में मिलाद मना के नाते पढ़ते हैं, मोहब्बत में वो करते हैं, करने दीजिए, लेकिन ये आज समझ नहीं आती उनको, ये आपको समझ आ गई है। तो आज अपनी जिंदगी का ये मिशन बनाए कि ये कुरान अब आपके हाथ में है, एक चिराग है, एक रोशनी है। दूसरे हाथ में हदीस को रख लें, इंशाल्लाह आपको अगले कोर्सेज में हदीस पढ़ाएंगे। आपने ये चिराग जलाने हैं, दुनिया में निकलना है, अपने इर्द गिर्द के अंधेरों को दूर करना है, देखे मेरी कहाँ जरूरत है, मैं क्या करूँ, मुझे किस तरह काम करना है। मैं अगर एक छोटी सी आपको गाइडलाइन दे दूँ कि आप जब निकलेंगे दुनिया में अब इस कुरान को लेकर, तो पांच किस्म के मुख्तलिफ महाज आपके सामने खुले होंगे, यानी फाइव डिफरेंट प्लेटफॉर्म है या एनिमीज हैं जिनसे अब आपने लड़ना है। लड़ने से मुराद अब जंगे नहीं है, ये इस कुरान के साथ जो जिहाद होता है ना, उसके लिए हम सब के सामने मुख्तलिफ महाज हैं। सिर्फ खुलासा दे देती हूँ, डिटेल फिर कभी होगी। सबसे पहले जिस चीज़ से आपने मुकाबला करना है ना, वो जाहिलियत है, और जाहिलियत की भी पहली किस्म कदीम, हमने सूरत मायदा में पढ़ा था फहुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या लोग जाहिलियत के तरीकों को अभी भी अपनाते हैं। जाहिलियत कदीमा क्या है, बस इसको ये समझे कि वो जाहिलियत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती आ रही और उस दौर में भी थी, और इसके अंदर से अगर आप दो लफ्ज निकालेंगे ना, तो एक निकलेगा शिर्क और एक आपके सामने आ जाएगी शिफात बातिला या नबी के मुकाम को घटाना बढ़ाना। سب سے پہلے آپ نے اس قرآن کے نور سے معاشرے میں سے شرک ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. کسی بھی قسم کا شرک ہے وہ اب آپ پڑھ چکے ہیں توحید کے مسائل میں اور شرک کے بیان میں, تو آپ نے اور میں نے اپنے ارد گرد سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شرک ختم کرنا ہے, جس کو لٹرلی شرک کہتے ہیں. یہ وہی شرک تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں کے لوگ موجود تھے. اور نبی کا مقام یا انبیاء کا مقام کیا ہے؟ فلاں آئے گا تو بخشوا لے گا, فلاں کی وجہ سے مدد ہوگی, دس اینڈ دیٹ. تو اگر اللہ کا مقام آپ لوگوں کو سمجھا دیں اور نبی کا مقام سمجھا دیں, تو قدیم ترین جاہلیت جو گزری ہے آپ نے الحمدللہ اس کا مقابلہ کر لیا. کرنا چاہتے ہیں, ہے اس کی ضرورت؟ کبھی اس دفعہ پاکستان جائیں نا آپ لوگ جو لندن میں اور ناروے میں اور باہر رہتے ہیں, تو صرف اس سوچ سے کہ ہمارے ملک میں کہاں کیا شرک ہے, چند درگاہوں اور قبروں کے حالات دیکھ کے آئیے گا. میرا نہیں خیال کہ آپ اس دن آ کے کھانا بھی کھا سکیں. لٹرلی لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہوئے دکھیں گے آپ کو, اور پوچھیں گی تو کہیں گے کہ ہم اس کو ہی مانتے ہیں. بس یہ تو ایسی کہانی ہے. آج صبح میری ایک ہندو لیڈی سے تھوڑی بات ہوئی, وہ بھی یہ کہتی, باجی ہمارا دھرم تمہارا ایک ہی ہے. میں نے کہا استغفر اللہ, دل میں سوچا ایک کیسے ہے. کہتی تم بھگوان اللہ کہتے ہو, ہم بھگوان کہتے ہیں. میں نے کہا یہاں تک تو ایک ہی ہے, یہ تو ہر ایک کا ایک ہے. کوئی مہادیو کہتا ہے تو کوئی اس کو گاڈ بڑی جی سے لکھتا ہے تو چھوٹی سے, مسئلہ اس سے آگے ہے. وہ اللہ کی بیٹیاں اور دیویاں بناتے تھے, آج ہم نے لکشمی اور جو کچھ کر دیا. تو بات تو بعد میں بگڑتی ہے. تو سب سے پہلی آپ نے اب اپنے دل میں جو نفرت محسوس کرنی ہے وہ شرک سے کرنی ہے, اور دوسری یہ جو بزرگوں کو خداؤں کا مقام, اور اسی میں نبیوں کے ساتھ غلو اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس پہ آپ نے کام کر لیا نا, اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے, صرف قرآن کا ترجمہ. ہر جگہ اپنے علاقوں میں, اپنے گھروں خاندانوں میں کوشش کر کے اس سال کا دورہ قرآن سنوا دیں. میں سوچتی ہوں کہ دورہ قرآن کرنے کے بعد بندے کو کم از کم قرآن کا مزاج سمجھ آ جاتا ہے. 2/3 آف قرآن شرک پہ بات کرتا ہے. مکی صورتیں ساری 1/3 کیا اس کا زیادہ حصہ توحید پہ اور شرک پہ بات کرتا ہے. اس کو دور کرنا بہت آسان ہے کیونکہ عموماً کم پڑھا لکھا طبقہ اس کا شکار ہوتا ہے. سمجھ نہیں ہوتی, بیمار ہوئے بچے کو اٹھا کے درگاہ پہ لے گئے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو اٹھایا کسی پیر کے پاس لے گئے. تو اس یہ بہت آسان ہے. اس کا حل پتہ کیسے ہے؟ شرک دیکھنے میں پھیلتا بہت ہے لیکن اس کا علاج آسان ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر تیل گر جاتا ہے نا کبھی, تو آپ دیکھیں گے وہ سارا تیل اوپر آ جاتا ہے. اس تیل کو دور کرنا کوئی مشکل ہے؟ اوپر ذرا اس کو ٹھنڈا کریں, وہ جم جائے گا اور ایک وہ بلائی کی تہہ اتار لے نیچے پانی میں تھر آئے گا. شرک بہت بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی معرفت, اللہ کے نام, اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. انشاءاللہ آسانی سے کام ہو جائے گا. نماز سکھا دیں, سورہ فاتحہ سکھا دیں, دعائیں سکھا دیں, آپ اس جاہلیت پہ انشاءاللہ قابو پا لیں گے. لیکن دوسرا محاذ بڑا مشکل ہے, وہ بھی جاہلیت ہی کی دوسری قسم ہے, اور وہ ہے جاہلیت جدیدہ, نیو, آج کے دور کی جہالت. اور وہ کیا ہے؟ مادہ پرستی کا جہاد, مٹیریلزم کا اپروچ. اور یہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے, تقریباً 300 سال سے یہ بت پیدا ہو گیا جس کو میٹر کہتے ہیں. لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ڈالر دا مائٹی ڈالر, اور پاؤنڈ تو پھر دا مائٹیسٹ ہو گیا, اس سے بھی بڑا ہو گیا. لوگ روپے پیسے سونے چاندی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس جاہلیت کا مقابلہ آپ نے قرآن سے کرنا ہے. جس طرف آپ دیکھیں دنیا میں آج جو حالات ہو گئے, ہماری اپنی ینگ جنریشن, ہمارے اپنے بچے کس کو پوچھتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں رشتوں کی تمیز ہوتی تھی, لوگ کسر کھا لیتے تھے, کہتے ہیں بزرگوں کی ہوتی تھی, اور کس کی ہوتی تھی؟ اپنے گاؤں شہر کی ہوتی تھی. ہم سب آج بھی کسی سے بھی کوئی معاملہ کریں نا, یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ پہ آ جاتی ہیں. چلو ابا ہے چھوڑ دو, اما ہے چھوڑ دو, اس کی نہیں کرو. آج اب کسی اپنے ینگ بچے سے بات کرے, میں ایک مثال دینے لگی ہوں صرف سمجھانے کے لیے, کہ ایک بچی کام نہیں کرتی ماں کے ساتھ گھر میں, اخیر ماں نے کہا کہ تم مجھے اس گھر میں ویکیوم کر دو, میں تمہیں 5 پاؤنڈ دوں گی. فوراً بچی نے ویکیوم لیا, ویکیوم کر کے کہتی گیو می مائی 5 پاؤنڈ. یہ ہے جاہلیت جدیدہ. ہماری نسلوں کے لیے روپیہ پیسہ مال اتنا بڑا ہو گیا, وہ کہتے بیکاز اٹس فیئر. میں خود حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ ضرورت کے باوجود نہیں بولتے. اللہ کے کام جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کے کرتا ہے, کبھی کوئی پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. لیکن ہمیں خود ہی سمجھ آتی ہے جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں, कि हमारे फलां साथी बेचारी, उनके इतने बच्चे हैं, उनके मियाँ हैं, उनको कहाँ वो आने जाने का खर्चा देते हैं कि हम जबरदस्ती उनको ठोसते हैं और वो हमेशा ना कहते हुए जबरदस्ती हम किसी भी तरह उनको देते हैं कि भाई लो, तुम जब अल्लाह के काम कर रही हो, तुम मियाँ से साथ आने का खर्चा जाने का मांगती हो तो कैसे देंगी? वो नहीं लेते, बड़ी मुश्किल से देते हैं जब भी किसी को देना पड़े। यंग बच्चियां पूरे तस्किए के बावजूद वो बड़ी खुशी से मांगती हैं। मैंने बहुत सोचा, मैंने एक ऐसा कोई कहीं किसी दूसरी जगह कोई केस था तो मैंने साथियों से बैठ के कहा कि मुझे खतरा ये है कि कहीं मैं ठीक तो नहीं पढ़ा रही, कुरान पढ़ के भी कोई ऐसा पूछे तो उनका साथ फिक्र नहीं करें, ये यहाँ का कल्चर है। 12 साल के बाद बच्चा या बच्ची लीगली कमा सकता है तो उनको बुरा नहीं लगता, वेयर इज माई पे, मेरे लिए तो ये लफ्ज गाली ही लगे, लेकिन वो कहते मेरी पे नहीं मिली मुझे, या मुझे मेरी पे इस वक्त जल्दी थे। तो मैं कहती थी कुरान पढ़ के भी बंदा ये जुमला बोलता है तो उन्होंने बताया कि आप ना फिक्र करें, इनका तस्किया हुआ हुआ है लेकिन इनको ये लफ्ज बुरा नहीं लगता, हम अपने अम्मी अबू से नहीं लेना चाहते। क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा लो, बच्चे कहते नहीं लेना, हम खुद कमाएंगे, चाहे कुरान पढ़ा के पैसे लेके कमाए, अबू से नहीं लेने पैसे हमने खर्चे के। सोच बदल गई। तो ये जाहिलियत है जदीदा है कि जिसमें आप कह लें कि पैसों आंखों पे पैसे की पट्टी चढ़ी हुई है, वो कहते हैं इट्स फेयर, नहीं प्रॉब्लम, जो नहीं फिर वो छोटे छोटे वो आपका भी नहीं आसान लेते, बच्चे माँ बाप से भी नहीं पैसे फिर लेते। इसका मुकाबला क्या है कि उनको आखिरत दिखा दे, अजर दिखा दे, इस दुनिया के डॉलर पाउंड की बजाय दुनिया जन्नत की वो चीजें दिखा दें कि जिसके लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि एक कूड़ा रखने के बराबर जगह अगर जन्नत की बंदे को मिल जाए, खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा, इस दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटेलेक्चुअल्स तैयार करने पड़ेंगे। आप ऐसा कुरान पढ़ें और यंगस्टर्स को सुनाएं कि उनकी आंखें खुल जाएं। ये मुश्किल महाज है दुनिया। और ये आपको पता कि कब हुआ? जब ये बड़े बड़े मुल्कों ने मादकवस्ती का जाल फैलाया। मैं इसकी डिटेल में इस वक्त जा नहीं सकती, लेकिन बस आपने मैंने इस पे काम करना है, अपने घरों से काम शुरू करके इर्द गिर्द यंगस्टर्स और पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के शोशे में शिकार बच्चे, जो शादी के बाद भी जॉब करने को बुरा नहीं समझते, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे तो जॉब नहीं बुरी लगती, अगर आप उनके हाथों में कुरान पकड़ा देंगे ना तो बात काफ़ी है। तीसरा महाज जो मेरे और आपके सामने खुलने वाला है इस कुरान के बाद, वो है बेयकीनी। यकीन कीजिए, आज भी इस माशरे में मुसलमानों में कुछ लोग मौजूद हैं कि जिनको ये यकीन ही नहीं कि हम सच्चे दीन पे, और जो बाहर के प्रोपेगंडे हमारे यंगस्टर्स के दिमागों पे, उनको बता दिया है कि तुम्हें पता नहीं सही है कि नहीं। बच्चे खुद कहते हैं मुंह से, आपको क्या पता कि इस्लामी ठीक दीन है, शायद क्रिश्चियन से ठीक हो। मैं क्यों अपने क्रिश्चियन दोस्त से को मुसलमान हो जाए, मैं उसके कहने पे क्रिश्चियन क्यों ना हो जाऊं, ये बच्चे पूछते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है, बस नाम तो इस्लाम का है ना, मुसलमान है, शिया है तो इट्स ओके, कोई इस्माइली है तो ओके, कोई हाँ फलां है तो कोई अहले हदीस है। यानी लोगों के जहनों में ये क्वेश्चंस हैं कि क्या यकीन है कि हम ही सच्चे हैं। तो इसके लिए भी आपको अपने घरों में और अपने इर्द गिर्द काम करना पड़ेगा। ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, पहले दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह पैगाम दे दिया था कि शक दूर करने वाली चीज ये किताब है।